सरल सा श्लोक है, मैं एक एक शब्द बोल रहा हूं, आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए। 13वें अध्याय का 22वां श्लोक है, 13.22। अध्याय का शीर्षक है प्रकृति पुरुष तथा चेतना, 13.22। पुरुषा प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगो अस्या सद् असद् योनि जन्मसु। मैं इसे धीरे धीरे करके बोल रहा हूँ, आप ग्रहण करें। पुरुषा प्रकृतिस्थो हि, पुरुषा प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्, भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोऽस्य, कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु। पुरुषा प्रकृतिस्थो हि, पुरुषा प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्, भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोऽस्य, कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु। पुरुषा प्रकृतिस्थो हि, भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु। पुरुषा प्रकृतिस्थो हि, भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु। एक एक शब्द का अर्थ मेरे पीछे पीछे दोहराइए। पुरुषः जीव, प्रकृतिस्था भौतिक शक्ति में स्थित होकर ही निश्चय ही भुङ्क्ते भोगता है प्रकृति जान, प्रकृति से उत्पन्न गुणान गुणों को, कारणम कारण गुण संगः प्रकृति के गुणों की संगति, अस्य जीव की सत असत अच्छी तथा बुरी योनि जीवन की योनियां, जन्मसु जन्मों में। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा किया गया। शिला प्रभुपाद की अनुवाद। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। मेरे पीछे पीछे अनुवाद दोहराइए। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तात्पर्य, इस श्लोक को समझाने के लिए श्रील प्रभुपाद ने कुछ विस्तार किया है जिसको मैं पढ़ रहा हूं। यह श्लोक यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में किस प्रकार देहांतरण करता है। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। जब तक जीव इस मिथ्या प्राकट्य पर मुग्ध रहता है तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप यह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। भौतिक इच्छा के वशीभूत हो उसे कभी देवता के रूप में, तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल जंतु, कभी संत पुरुष, तो कभी खटमल के रूप में जन्म लेना होता है। यह कर्म चलता रहता है और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है, जबकि वह प्रकृति के वश में होता है। यहाँ पर बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है। यह प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है। अतएव इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थिर होना पड़ता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करने के लिए बाध्य करती रहती है, क्योंकि अनादि काल से उसमें भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त हैं। लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा। यह परिवर्तन प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर ही लाया जा सकता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है, जो कृष्ण से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करता है। यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चिर अभिलाषा आकांक्षा समाप्त हो जाए, और क्रमशः ज्यों ज्यों यह प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करता जाएगा त्यों त्यों उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। एक वैदिक मंत्र में कहा गया है कि जो जो जीव भगवान की संगति से विद्वान बनता जाता है त्यों तो उसी अनुपात में वह आनंदमय जीवन का आस्वादन करता है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तं वन्दे श्री गुरुदीन तारणम्। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान यहाँ अर्जुन को स्पष्ट बता रहे हैं कि जीव को इस भौतिक जगत में आने का, टिके रहने का, बसे रहने का क्या मुख्य कारण है। भगवान कहते हैं कि प्रकृति जान गुणान, भगवान शब्द दे रहे हैं पुरुषा। पुरुषा का अर्थ होता है जो पुरी में शयन करता है। नव द्वारे पूरे देही नैव कुर्वन् न कारयन्। देही और देह दो अलग अलग बातें हैं। जैसे रोगी और रोग, धनी और धन। धनी धन नहीं है, रोगी रोग नहीं है। जिस व्यक्ति को रोग हो जाता है उस व्यक्ति को रोगी कहते हैं। जिस व्यक्ति के पास धन आ जाता है उसको धनी कहते हैं। तो एक वस्तु है और दूसरा उसको प्राप्त करने वाला है। उसी तरह से एक देह है और एक देही है। तो जो देह को जैसे जो रोग को प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? रोगी। जो धन को मिलता है या जो धन जिसको मिलता है उसको बोलते हैं धनी। उसी तरह जिसको देह मिलता है उसको क्या कहेंगे? देही। तो जो देही शब्द है वो ही पुरुष है। तो भगवान कहते हैं कि देही को देह मिला है और उस देह को वो प्रकृति के गुणों के कारण भोगता रहता है, उसी भोग में वो चला जा रहा है, रमा जा रहा है, बसा जा रहा है। 84 लाख योनियों में देही वही है, वही एक देही 84 लाख देहों में भ्रमण करता है। कभी एक भोग की इच्छा से, कभी दूसरे भोग की इच्छा से, कभी तीसरे भोग की इच्छा से। इंद्रियों से जो भी भोग मिल सकता है, चाहे सत योनि है या असत योनि है। सत योनि का अर्थ होता है जो बड़ी योनियां हैं, देवताओं की योनियां हैं, ऊंची योनियां हैं या उच्च मानवों की योनियां हैं। अदम योनियां जो नीचे पशु की योनियां हैं, पक्षी योनियां हैं, और उसके नीचे जो अन्य अनगिनत योनियां हैं। तो भगवान कहते हैं कि सत असत योनियों में जो भ्रमण कर रहा है वो देही वास्तव में गुणों से बाहर नहीं आ पा रहा है, इसलिए उसका भ्रमण ये निरंतर चलायमान है, चल ही रहा है। एक पशु के शरीर में, चाहे कुत्ता माने या सुअर माने या मनुष्य के शरीर में, जिस तरह का सुख है, सुख एक जैसे हैं। एक कुत्ते को जो शरीर से भोग मिलता है, सुख मिलता है, और मनुष्य को जो शरीर से भोग मिलता है उसकी क्वालिटी में कोई अंतर नहीं होता। भोग से सुख उसी तरह का, कोई ये नहीं कह सकता है कि मनुष्य का जो सुख है वो कुत्ते के सुख से बड़ा है। मान लीजिए थोड़ा सा अन्न अगर चांदी की प्लेट में रख कर के परोसें या सोने की प्लेट में रख कर के परोसें या प्लास्टिक की प्लेट में रख कर के परोसें या कागज की प्लेट में रख कर के परोसें, उस अन्न में कोई अंतर आएगा? खाने की कोई चीज किस प्लेट में रखी है? थोड़ा इको बड़ा हुआ है, इको कम करना चाहिए। खाने की अगर जो वस्तु है वो महत्वपूर्ण है या प्लेट महत्वपूर्ण है? थाली महत्वपूर्ण है या खाना महत्वपूर्ण है? पेट किससे भरेगा, थाली से या खाने से? खाने से पेट भरेगा ना। तो अगर वो खाना प्लास्टिक की प्लेट में रख करके खाया जाएगा या चांदी और सोने की प्लेट में रख करके खाया जाएगा, तो खाने में कोई ये नहीं कह सकता है कि बहुत अंतर हो गया। अंतर होगा क्या? तो सत असत योनियों में, बड़ी योनियों में और नीचे की योनियों में किसी तरह के सुख में कोई अंतर नहीं होता। एक कुत्ता भी अगर इंद्रिय भोग करता है फीमेल बॉडी के साथ या मनुष्य भी भोग करता है, तो उस सुख में कुत्ते को कम सुख नहीं मिलता है, मनुष्य को भी वही सुख मिलता है। लेकिन इसी तरह के सुख में अपने आप को ये समझता है देही जीव, ये समझता है कि शायद उस सुख को प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा, उस सुख को प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। लेकिन इस सुख प्राप्त करने की चिर अभिलाषा जो उसके हृदय में है वो उसको सुखी नहीं कर सकती है, वो सुख उसको बार बार मिलता जा रहा है। जिस तरह की हमारी इच्छाएं रहती हैं उस तरह की इच्छाओं के अनुसार हमें शरीर मिलेंगे, ये निश्चित बात है। कोई कहे कि अभी मेरा इस भौतिक जगत में कितना समय बाकी है, तो निश्चित मान लेना चाहिए कि जितनी अभी उसकी इच्छाएं बची हैं, उस इच्छाओं को, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जितने अनुरूप शरीर होंगे वो सब शरीर अभी लेने बाकी हैं। और तिस पर भी अगर इच्छाएं इस भौतिक जगत के भोग करने की और बढ़ रही हैं, तो वास्तव में हम मूर्खतावश अपना काल इस भौतिक जगत में बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि सत असत योनियों से ऊपर उठने के लिए जीव को वास्तव में प्रकृति के गुणों से बाहर आना पड़ेगा। तीन तरह के जो प्रकृति के गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इसके प्रभाव से बाहर आना पड़ेगा। जीव वास्तव में मूलतः इन गुणों से प्रभावित नहीं है। भगवान भगवद गीता में एक श्लोक में कहते हैं कि नव द्वारे पूरे देही नैव कुर्वन ना कारयन, कि जो देही है, जो आत्मा है, जो पुरुष है, हम लोग जो हैं लिविंग एंटिटी सोल, नव द्वारे पूरे, उस पुरी में जिसके नौ द्वार हैं, अर्थात वर्तमान शरीर में नौ द्वार होते हैं, नौ गेट होते हैं जहां से आवागमन होता है। तो नव द्वारे पूरे, ये जो नव द्वार की जो पुरी है जिसमें देही शयन करता है उसको पुरुष बोलते हैं। शयन करता का मतलब बैठा हुआ है, सोया हुआ है, सुप्त अवस्था में, नहीं जानता अपनी स्थिति को। नैव कुर्वन, वास्तव में उसके द्वारा कुछ होता नहीं है, ना कार्य, ना वो कुछ कर ही सकता है। इस भौतिक जगत में मिथ्या अपने आप को वो भोगी मान रहा है कि मैं ये भोग कर सकता हूं। वास्तव में वो भोग करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसके अनुकूल नहीं है भौतिक जगत। जीव का जो सुख है वो इस भौतिक जगत का सुख नहीं है, क्योंकि जीव स्वभाव से इस भौतिक जगत का नहीं है। जीव स्वभाव से भगवान का अंश है, सच्चिदानंद है। तो जो गुणों का आवरण भिन्न भिन्न रूप में, भिन्न भिन्न देहों में, 84 लाख तरह के कम्बिनेशन में गुणों के साथ जीता है, वो वास्तव में धोखा है उसके साथ। और ये धोखा करने वाला कोई अन्य नहीं है, वास्तव में हमारी भोग करने की प्रवृत्ति है। और भाग्य से जब जीव भक्तों के संपर्क में आता है, अपना स्वरूप समझने लगता है, जानने लगता है कि मैं वास्तव में क्या हूं, तो मानना चाहिए कि उसकी यात्रा समाप्त होने की दिशा पकड़ ली है। एक डिटरमिन पॉइंट एक आ गया कि इससे आगे वो अब बहुत गिरेगा नहीं। तो बहुत अनिवार्य है कि जीव ये समझ ले मनुष्य रूप में कि भक्ति वास्तव में उसके लिए चरम सीमा, उसकी जो लाभ की, उसकी हित की चरम सीमा है। तो भगवान की भक्ति में जैसे ही जीव जुड़ता है, उसका सौभाग्य उसी दिन से शुरू हो जाता है। वर्तमान काल में, इस युग में जिसको कलयुग बोलते हैं, भक्तों को सबसे अधिक ये बात का महत्व बताया जाता है कि भगवान के नाम का जप, जैसे हमने आपके सामने बहुत देर तक हरिनाम कीर्तन किया, तो वास्तव में यही औषधि है इस वर्तमान युग की। इसमें जितना जीव अपने आप को रमाता है, जितना इसमें अपने आप को लगाता है, उतना ही वो शुद्ध होता जाता है। अन्य विधियां उतनी कारगर नहीं है। तो भक्तों को भी इस बात का विश्वास मान लेना चाहिए, हृदय में इस बात को धसा लेना चाहिए कि हरि नाम वास्तव में इस युग में हमें बचाने वाला है। इस हरि नाम की जो कमाई है, इसको सहेज करके रखना चाहिए। बड़े भाग्य से वास्तव में हमें हरि नाम मिला। मैं एक छोटे से उदाहरण से इसको थोड़ा बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति भिखारी है, दाएं बाएं रोड पर चौक पर कहीं कहीं जा करके भीख मांगा करता है, अपना पेट पालता है। उसको किसी ने डेली वेजिस पर वर्कर लगा दिया। अभी डेली वेजिस पर उसको 300 रुपया या 250 रुपया प्रतिदिन शाम को 7 बजे 6 बजे सुबह से रात तक काम करता है और उसको 6 बजे कुछ पगार मिल जाती है। जा करके भीख मांगने की जरूरत नहीं है, अपने परिवार के साथ सुख से निर्वाह कर सकता है। जो छोटी सी झुग्गी में वो रहता है, अब 200 रुपया 250 रुपया जो उसको डेली वेजिस का मिला, अपनी फैक्ट्री से चला और झोपड़ी तक आने में कहीं उसकी जेब फट गई, किसी ने उसको बातों में लगा लिया, 50 रुपया किसी ने छीन लिया, 20 रुपया किसी ने छीन लिया, 60 रुपया किसी ने छीन लिया, तो घर पहुंचते पहुंचते उसको 10-20 रुपया मिला, बाकी सब रास्ते में या तो गिर गया या कोई चोरी चकारी उससे बातों में लगा करके छीन के ले गया। तो भीख मांगने के बाद अभी जो स्थिति उसने ली, उस स्थिति में भी उसको बहुत इम्प्रूवमेंट तो नहीं हुआ ना। जो कमाया, इज्जत के साथ कमाया, 200-250-300 रुपया उसने कमाया, घर आते आते तक आधे घंटे में आया, पैदल आ रहा था फेस वन इंडस्ट्रियल एरिया से, यही झुकी थी सेक्टर 31 के पास, पैसा नहीं है, 10-20 रुपए रह गया, नहीं तो वो भी नहीं रह गया। तो बड़ी कृपा से किसी ने डेली वेजिस पर लगाया था, लेकिन उसका फल कितना पाया उसने, 10-5%, 20%, बाकी सब खो गया। या मान लीजिए ले भी आया घर, 300 रुपया घर ले आया, और शाम में आकर के कोई पड़ोसी आया, आज तो थोड़ा सा 100 रुपया उसमें खराब कर दिया। तो उसको कोशिश करके करना क्या चाहिए था, 10-20 रुपये रोज जोड़ करके रखना चाहिए था, धीरे 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 करके उसकी स्थिति संभल जाती। एक अमीर आदमी का 100-200 रुपया गिरे तो उसको बहुत हानि होती है क्या? कोई हानि नहीं होती है। लेकिन जो अभी अभी हाल ही में प्रमोट हुआ है भिखारी से और डेली वेजिस पर लगा है और रोज उसके 100-150 रुपया 150 रुपया ऐसे ही चले जाए, तो उसको कितना बड़ा नुकसान होता होगा। तो भक्त जब जप करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भी रिसेंटली भीख मांगी हुई स्थिति से प्रमोट हुए हम, किसी भक्त की कृपा से लग गए हैं ये फैक्ट्री में डेली वेजिस पर, कोई बहुत बड़े रईस नहीं है, किसी के पिता का पितामह का कोई बहुत बड़ी संपत्ति जागीर रहती है, कोई बात नहीं, नाम नहीं अगर सुनाई दे रहा है, नाम में ध्यान नहीं है तो चल जाएगा, बहुत धन अभी जुड़ा है। ये 1728 रुपए की प्रतिदिन की कमाई होती है, बहुत छोटी सी कमाई है। ये रास्ते में कोई इफ्को चौक पर लूट के ले जाए या गिर जाए या जेब फट जाए या घर आए जप कर लिए अच्छे से ध्यान से, लेकिन फिर वैष्णव अपराध हो गया, कोई पड़ोसी के साथ बैठ करके दारू पी लिया, दारू पी लिया का मतलब किसी वैष्णव का अपमान कर दिया, अपराध कर दिया। तो बड़ा सहज सजग रहना चाहिए भक्तों को कि हम कोई बहुत बड़े शुद्ध भक्त नहीं हो गए जिसकी कोई थोड़ी बहुत कमाई उजड़ जाने से कोई मुश्किल नहीं है, 100-200 रुपए निकल जाने से। हमें तो एक एक रुपए का वास्तव में मूल्य समझना चाहिए। तो जो जितना गरीब होता है उसको धन की उतनी ही ज़्यादा वैल्यू समझनी चाहिए। एक रईस बाप का बच्चा 100 रुपया कहीं भी उड़ा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति अगर गरीब है तो 10 रुपया भी खर्च करते हुए सोचता है कि नहीं सोचता,
तो अगर उसको ये एहसास है कि मेरी आज की कमाई, सुबह मैंने 2 घंटा 3 घंटा लगा करके कुछ कमाई किया, आधा अधूरा मेरे हाथ में आया, इसको मैं सहेज करके रखूं, फिर समाज में जाता है, ऑफिस में जाता है, दाएं बाएं जाता है, कॉन्शियसनेस बदलती है, फिर चेतना बदलती है, फिर अगले दिन जैसे डेली वेजेस पर फिर काम करते हैं रोज कामगार, उसी तरह 2 घंटा 3 घंटा फिर कमाई करता है, तो उस कमाई को वास्तव में पूंजी मानना चाहिए। एक एक नाम जो भगवान का है, एक एक रुपए का सिक्का ठन करके आवाज आकर के जेब में आना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जहाँ कोई जेब फटी हो तो सिलवा लेनी चाहिए, जहाँ से मन नजर आ रहा हो कि ये मेरा कमजोर पॉइंट है, जब करते हुए यहाँ पर मैं तंग होता हूँ, यहाँ पर डाइवर्ट होता हूँ, इस जेब से, यहाँ से धागा वीक है, यहाँ से निकल जाता, उस धागे से सिला लेना चाहिए उस जेब को, नहीं तो बार बार उसी जेब में पैसा रखेगा, बार बार निकलेगा, बार बार रखेगा, बार बार निकलेगा, मैं तो संभाल के लाता हूँ, आपकी जेब फटी हुई है सारा, इसमें आपका दोष नहीं, जेब सिलवा लेनी चाहिए। तो भोग की जिस प्रवृत्ति में वास्तव में मन ले जाता है, ये चोर कहीं बाहर नहीं बैठा है, डाकू बाहर नहीं बैठा है, अपने साथ ही उस डाकू को हम रखे हैं, उस डाकू से सदा सजग रहना है, ये मन से सदा सजग रहना है, ये सारी की सारी कमाई लुटा करके हमें वास्तव में उसी स्थान पर ले आना चाहता है जहाँ से अभी हम कल रात को शाम को उठे थे, कोई 2 साल पहले, कोई 6 महीने पहले, कोई 5 साल पहले, कोई 1 जन्म पहले, कोई 2 जन्म पहले, कोई बहुत तो पुराना अभी हमारी भक्ति की कमाई नहीं है, तो इसको सहेज करके रखना चाहिए। जैसे भगवान यहाँ पर कहते हैं कि गुणों से बाहर आने से ही वास्तव में इस भौतिक जगत से निवारण होगा, तो गुणों से बाहर आने का अर्थ यह होता है, भगवान इसी अध्याय के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में बोलते हैं कि इस भौतिक जगत से कोई आकांक्षा जब नहीं रह जाती है, यह हृदय में बिल्कुल विश्वास स्थापित हो गया कि इस भौतिक जगत से मुझे सुख नहीं मिल सकता है, आकांक्षा बोलेंगे तो डिजायर, इस भौतिक जगत से सुख मात्र की कोई चीज है, एग्जिस्ट करती है, ये बात विश्वास मान लेना चाहिए कि नहीं कोई ऐसी चीज है। जब किसी भी तरह की आकांक्षा से या किसी भी तरह के शोक से, डिस्ट्रेस से, किस चीज का शोक करना है, इस जगत में हमें खोने के लिए या पाने के लिए कुछ भी नहीं है, इस भौतिक जगत का कुछ पाया भी ना पाया जैसा है, खोया भी ना खोया जैसा है। तो भगवान कहते हैं कि जब जीव इस आकांक्षा और शोक के धरातल से ऊपर उठता है, मद भक्ति लभते पराम, वो वास्तव में मेरी भक्ति को शुरू करता है। तो इस तरह का विश्वास पालन करना चाहिए भक्ति में आकर के, और सबसे सुंदर इस कलयुग की जो औषधि है, उस औषधि को लेते हुए ये सजग रहना चाहिए कि ये कमाई बड़ी गाढ़ कमाई है, इसको लुटाना नहीं है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या कोई संशय है तो पूछ सकते हैं। जी माता जी, भगवान को ब्रेड भोग लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? अच्छा, जरूर लगा सकते हैं, ब्रेड मेकर ला करके घर पे बना लीजिए और भगवान को भोग लगा दीजिए। नहीं, मैं सत्य बता रहा हूं माता जी, नहीं, अगर ये ब्रेड बाहर की है तो उसको भोग नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल, मैं भी आपके साथ हूं माता जी। और किसी का कोई प्रश्न है?
भगवान कृष्ण गीता में कहा है, ना केवलम्यं मनसा सुनामि
किसी और ग्रंथ का श्लोक है, कहीं और कहा है भगवान ने, ये भगवत गीता में नहीं कहा। एनीवे आप बताइए आपका प्रश्न क्या है।
इसमें भगवान ने ऐसा नहीं कहा है कि मेरे ज्यादा को भक्ति की जाए, स्मरण किया जाए, हम तो कर्मों पे कर्मण्य वादी कारक तो सबसे ज्यादा कर्म पे और जोर दिया है, तो आपका इस बारे में क्या?
आपका सुंदर प्रश्न है प्रभु जी कि भगवान ने कर्म ही करने के लिए कहा है, भक्ति में क्या निठल्ले बैठे रहना है, काम करना पड़ता है ना भक्ति में भी। भगवान ने जो कर्म करने के लिए कहा है उस शब्द को थोड़ा समझना चाहिए। हर एक कर्म का जो इस भौतिक जगत में किया जाता है उसका फल मिलता है, मिलता है ना। मान लीजिए आप ऑफिस में आप क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। आप जब व्यापार करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, कुछ खरीदा कुछ बेचा, तो सेल और परचेज से जो एक्टिविटी जो कर्म आप कर रहे हैं कुछ प्रॉफिट आपको होता है ना, उसका फल मिलता है। हर एक काम का कोई ना कोई फल मिलता है। तो वो जो फल आपको मिला वो फल भोगने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा ना, प्रॉफिट एंजॉय करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। किसी समय ऐसा भी हो सकता है कि माल पुराना हो गया, आउटडेटेड एक्सपायर हो गया, तो उस पर नुकसान भी हो सकता है, वो नुकसान झेलने के लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा। तो फल जब मिलता है, चाहे लाभ का फल हो या हानि का फल हो, दोनों फल आपके हैं, ठीक है ना। तो इस भौतिक जगत में जो भी कर्म करते हैं इस भौतिक जगत को भोगने के उद्देश्य से, तो उसका कोई ना कोई पुण्य या पाप फल मिलता है। तो उस पुण्य और पाप फल को भोगने के लिए शरीर चाहिए ना कि नहीं चाहिए, शरीर चाहिए ना, तो ही तो उसको भोगा जाएगा। तो ये जो भोग का सिलसिला है कर्मों से, जो हम तथाकथित कर्मों की बात कह रहे हैं, वो कर्म जीव के कर्म नहीं होते हैं। वो जो कर्म जीव करता है वो इस भौतिक जगत में अपने आप को शरीर के साथ मान करके कि मैं शरीर हूं, वो कर्म करता है। जीव इस शरीर से अलग है, जैसे मैंने बताया कि देही एक होता है, देह अलग होता है, कार अलग है, कार चलाने वाला अलग है। अगर कार चलाने वाला अपने आप को कार मान लेगा तो उसकी बुद्धिमानी तो नहीं है ना, कार अलग चीज है, वो कार का चालक है। तो जो कार का चालक है उस पर टायर फिट कर सकते हैं, नट फिट कर सकते हैं, पेट्रोल डाल सकते हैं उसमें, नहीं ना डाल सकते ना। वो कर्म कार का कर्म है, उसको चलना है, उसको यात्रा पूरी करनी है। जो उसमें बैठा है उसका कर्म तो अलग होगा ना, या उसका कर्म और कार का कर्म दोनों का कर्म एक जैसा है? वो पहिया अपने पांव पर बांध करके पेट्रोल पी करके चल सकता है? नहीं चल पाएगा ना। उसी तरह से जीव का जो कर्म है, जीव कार नहीं है, देह नहीं है, जीव देही है, वो कार में बैठा है। जो कार में बैठा है वो अपने ऑफिस का प्लान करता है, बिजनेस का प्लान करता है, घर में क्या है, समाज में क्या है, बच्चों की पढ़ाई करानी है, उसको कार की मैकेनिज्म से कोई लेना देने, कार चल रही है, पेट्रोल डाला चल रही है। उसी तरह से शरीर चल रहा है, शरीर के कर्म चल रहे हैं, लेकिन जो अंदर जीव है, जो हम हैं, जो देही है, उसके कर्म अलग होते हैं। ये कर्म भगवान ने भक्ति योग में कहे हैं, कर्म योग में कहे हैं। तो जो कर्म योग है वो जीव के लिए है, शरीर के लिए नहीं है। तो कर्म योग वास्तव में कर्म करके कैसे योग हो, योग का क्या अर्थ होता है, मिलना जोड़ना। जो कर्म हमको मिला दे उसको कर्म योग कहते हैं। तो कौन से कर्म से योग होगा, किसके साथ कर्म योग, किसके साथ कर्म योग, किसके संदर्भ में, किसके कंटेक्स्ट में कर्म योग है, किसके कंटेक्स्ट में है प्रभु जी बताइए आप। कर्म योग किसके, योग किसके कंटेक्स्ट में, किसके संदर्भ में, भगवान के संदर्भ में। तो कौन से कर्म से वो योग हो जाएगा उसको समझना जरूरी है। जो जीव का स्वभाव है वो भगवान की भक्ति है, इसी कर्म को भगवान ने भगवद गीता में कहा है, इसी को कर्म योग कहा जाता है। ये शरीर के जो कर्म है वो पेट्रोल जैसे हैं, वो तो चलेगी गाड़ी, आप नहीं करेंगे तो भी चलेगी, जितना एक के भाग्य में है सुख और दुख वो उसको मिल जाएगा। वर्तमान जो देही का देह है उसके कुछ सुख और दुख जुड़े हैं वो उसको प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन देही को अपना स्थान प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, वो भक्ति के लिए भगवान ने कर्म योग कहा है। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी का कोई डाउट कोई संदेह है? श्रीमद् भगवद गीता अथारूप की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, शिला प्रभुपाद की, जय गौर प्रेमानंद।